हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रश्मि का कॉल कट होने के बाद राधिका ने रितेश के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम उसे अकेले मिलने जाओगे? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सुनकर रितेश ने गहरी सांस ली और फिर राधिका की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लगता है डॉक्टर रश्मि तुमसे ज्यादा सुंदर है जो मैं उसके पास चला जाऊंगा? राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन वो एक विधवा है, वो भी कितने सालों से, क्या पता तुम पर डोरे डालने लग जाए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। रितेश ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ, जिसकी तरफ कोई भी लड़की आसानी से अट्रैक्ट हो सकती है और उसे अपना दिल दे सकती है, उसे पर डोरे डाल सकती है। राधिका ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने कहावत सुनी है, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, उसी तरीके से अगर उसके आसपास कोई मर्द है ही नहीं जिस पर वो डोरे डाल पाए तो वो तुम पर भी जरूर ट्राई करेगी और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। रितेश ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुमने मुझे गधा कहा? राधिका ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा, इसमें कोई शक है क्या? माधवी ने जल्दी से उन दोनों को बीच में रोकते हुए कहा, अब तुम दोनों लड़ना मत शुरू कर देना, चलो बाहर चलते हैं, फूलों की खिचड़ी पका रहे हैं, उनको भी देखना है। इतना बोलकर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से उठाते हुए बाहर लेकर गई। रितेश उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो कमरे से बाहर ना निकल गई और उसके बाद वो दोनों भी अपने काम में लग गए। सीढ़ियां उतरते वक्त राधिका ने आंखें छोटी करते हुए कहा, जीजी मुझे क्या लगता है आपकी बहू को पूरी तरीके से अपने वश में करना चाहती हैं, देखो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है उससे। माधवी ने राव्या की तरफ देखा जो सच में निवेदिता से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी और हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। वो दोनों नीचे आईं और फिर सामने रखे सोफे पर बैठते हुए बोली, क्या खिचड़ी पक रही है आज तुम तीनों के बीच? ये सुनकर राव्या ने खुश होते हुए कहा, मम्मी जी आपको पता है चाची जी ने मुझे कैंडल बनाना सिखाए, अब हम लोग कैंडल बनाएंगे। निवेदिता ने उसके एक्साइटमेंट देखते हुए कहा, कैंडल तो बनाना लेकिन अपने हाथ का ध्यान रखना, कहीं एक्साइटमेंट में तुम अपना हाथ ना जला दो। राव्या ने निवेदिता को साइड से गले लगाते हुए कहा, चिंता मत करिए मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ, मैं बहुत ध्यान से करूँगी। उसकी ये बात सुनकर निवेदिता मुस्कुरा उठी तो वहीं अना ही सोफे से उठते हुए बोली, मैं आप सब लोगों के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है ब्रेकफास्ट को। इतना बोलकर अना ही उठी और फिर तेज़ कदमों से किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद उसने सबसे पहले कॉफ़ी चढ़ाई और उसके बाद फिर से अपना फ़ोन निकालकर रूहान का नंबर डायल किया। दो तीन दिन के बाद इस बार रूहान का कॉल उठा लिया और ये देखकर अना ही ने जल्दी से कहा, भगवान जी आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका कॉल ट्राई कर रही हूँ। सामने से रूहान की बजाय डॉक्टर रश्मि ने कहा, बेटा रूहान बिल्कुल ठीक है, कल रात को मेरे पास आया था, अक्सर उसे सरदर्द होने लगता है और उसका माइग्रेन बढ़ जाता है और उस वक्त वो मेरे पास आ जाता है क्योंकि मैं उसकी डॉक्टर हूँ, मेरा नाम रश्मि है, शायद रूहान ने तुम्हें मेरे बारे में बताया हो। अनाही को याद आया, उसने रूहान की रिपोर्ट देखी थी और वो माइग्रेन वाली मेडिसिन भी। उसने धीरे से कहा, वो अच्छा ठीक है, जब रूहान की बात करने के मूड में हो तो उनसे कहना कि मैं उनको बहुत मिस कर रही थी और मुझे उनसे बात करनी है। रश्मि ने जल्दी से कहा, बेटा मूड की बात नहीं है, अभी वो गहरी नींद में है, मैंने रात को उसका ट्रीटमेंट करके उसे थोड़ी नींद की दवाई दी थी ताकि वो आराम कर पाए। ऐसा लग रहा है पिछले दो दिन में उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और ऊपर से उसे हल्का फीवर भी था, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? अनाही को याद आया, उसने सहगल हाउस में देखा था कि रूहान की तबीयत बिगड़ रही है लेकिन उसके बाद वो खुद में इतना उलझ गई कि उसने फिर से ध्यान ही नहीं दिया रूहान का फीवर ठीक भी हुआ या नहीं, क्योंकि फीवर देखने के बाद ही राधे श्याम ने उसे उसकी सच्चाई बताई थी और उसके बाद से वो होश में ही नहीं रही और घर आने के बाद भी इतना सब कुछ हो गया कि उसे मौका ही नहीं मिला फिर से रूहान की तबीयत के बारे में सोचने का। उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं भूल गई थी, आप उनका ख्याल रखना और हो सके तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं वहीं आ जाऊंगी। ये सुनकर रश्मि के होठों पर स्माइल आ गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेजती हूँ, तुम आ जाना उससे मिलने के लिए, मुझे पता है वो भी उठते ही बस यही पूछेगा कि मेरी मैडम जी कहाँ हैं। रश्मि के मुंह से मैडम जी सुनकर अनाही शर्मा गई और फिर बस हाँ बोलते हुए उसने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर पहले जहाँ परेशानी थी अब शर्म थी, लेकिन साथ में उसे बुरा भी लग रहा था, वो कैसे इतनी बड़ी बात इग्नोर कर सकती है, क्या वो इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई है कि अपने चक्कर में रूहान की सीरियस तबीयत को भी भूल गई, उसकी वजह से बेचारा बारिश में भी गया था। अब वो बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करने लगी ताकि वो जल्द से जल्द रूहान के पास पहुंच पाए। सही हॉल के अंदर माधवी राव्या के पास बैठकर धीरे से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम अनाही के सास के पास बैठकर अनाही जैसी बहू बन जाओगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसके लिए तुम्हें अनाही के साथ रहना पड़ेगा। चलो जो उसी सीखो अच्छी कॉफी कैसे बनती है, तुम्हारी वाली कॉफी पीने लायक बिल्कुल नहीं होती है। यह सुनकर राविया एकदम से सहम गई, तो निवेदिता ने जल्दी से कहा, अरे आप क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हैं, ये भी जल्दी सीख जाएगी और इतनी बेकार भी नहीं बनाती है, मैंने भी पीकर देखी है। निवेदिता को अपनी तरफदारी करते देखकर राविया खुश हुई थी, तो वहीं राधिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने माधवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ जीजी, बहुरानी इतनी खराब कॉफी भी नहीं बनाती, काफी हद तक अच्छी ही बनाती है। माधवी ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और राविया जल्दी से उनके बीच से निकलते हुए किचन में चली गई, जहां अनाही जल्दी जल्दी कॉफी मग अरेंज कर रही थी। राविया ने जल्दी से उन कप्स में कॉफी छानते हुए कहा, क्या हुआ दी, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? आज तो आप बोल रही थी लंच टाइम के बाद ऑफिस जाएंगी, फिर ये जल्दबाजी? ऑफिस को याद करते ही अनाही के हाथ रुक गए और उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ गॉड, ऑफिस, उसे तो मैं भूल ही गई थी। फिर उसने हल्के गुस्से में कहा, सब कुछ एक ही टाइम पर क्यों होता है मेरे साथ, किस्मत ही खराब है। उसकी ये बात सुनकर राविया ने कहा, अरे इसमें किस्मत का क्या दोष है, ऐसा क्या हुआ है? अनाही ने जल्दी से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम एक काम करो ये कॉफी सबको दे दो, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। अनाही की बात सुनकर राविया ने कहा, और आप अपना ख्याल रखिएगा, जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे एक कॉल कर लेना, मैं आपकी हेल्प करने आ जाऊंगी। अनाही जल्दी से उसके पास आई और फिर उसे अपने गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए, चलो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलते हुए अनाही तेज कदमों से किचन से निकली और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे ऐसे जाते देखकर राधिका ने कहा, जीजी कुछ भी कहो, पर आपकी बहू ऐसे आपके बिना बताए कुछ भी करने लगती है। यहाँ से कॉफी बनाने के लिए बोलकर गई थी और जैसे ही राविया किचन में पहुंची, देखो कैसे भाग रही है, जैसे पता नहीं कितना जरूरी काम हो गया है।
माधवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जब उसके घर वालों को ही उसकी चिंता नहीं है तो हम क्यों करें, वैसे भी वर्किंग लेडीज ऐसी ही तो होती हैं, चलो कम से कम ये रात में तो बाहर नहीं रहती है, वरना आजकल की लड़कियां तो रात को भी घर पर नहीं टिक पाती हैं ढंग से। माधवी और राधिका दोनों अनाही को ऐसे जल्दबाजी में ऊपर जाते हुए देखकर बातें बना रही थीं।